ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी। पिछले 3 दिन से यहाँ बाबा के घर में, अर्थात अपने ही घर में, परिवार के बीच में समय बिता रहे हैं। और जहां तक मैं समझती हूं, हर पल, हर श्वास, हर संकल्प में आप कुछ विशेष नवीन अनुभव कर रहे होंगे। सही बात है ये? सही बात है तो जरा हाथ उठाएं। तो यही आपके श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। भगवान ने आपके भाग्य को देखते हुए किसी न किसी को निमित्त बना करके अपनी गोदी में ले आए हैं। परमात्मा घर और दर माना परमात्मा की गोदी है। तो ऐसे आप सभी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देखते मिलते, जितना ही आप सब खुशी का अनुभव करते हो। मालूम है आपसे ज्यादा हम खुश होते हैं। मालूम है आपसे ज्यादा कौन खुश होते? हम खुश होते। क्यों? किसी परिवार के अंदर अगर नई बेबी जन्म ले, नया बच्चा जन्म ले, तो माँ बाप भाई बहन परिवार वालों को खुशी फील होती है कि हमारे घर में एक नया मेंबर आया है। तो हमें भी खुशी होती है कि हमारे बाबा के घर में एक साथ इतने नए बच्चों का जन्म हुआ है। बताओ ज्यादा खुशी आपकी है या हमारी? तो इसलिए हम बहुत ज्यादा खुश हैं। आप सभी को अपने इस नए दिव्य जन्म की बहुत बहुत मुबारकबादी है। ये आपका नया ईश्वरीय अलौकिक जन्म है। आज का विषय है संस्कृति को बनाए रखने के लिए कला का क्या योगदान हो सकता है, कला का क्या महत्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये कला शब्द को समझना जरूरी है। कला से यही मतलब नहीं होता है कि नाचना, गाना, ड्रामा करना, फिल्म बनाना, अभिव्यक्ति करना, उसको ही कला कहते हैं क्या? कला क्या है वास्तव में? कला का संबंध संस्कृति के साथ क्यों जोड़ा जाता है? संस्कृति हर देश की अपनी अपनी होती है। हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है ना? हर युग की संस्कृति अलग अलग है। हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है। तो ये संस्कृति का निर्माण कहाँ से होता है? संस्कारों से। आत्मा शरीर द्वारा कर्म करती है। उस कर्म की पहचान क्या है? संस्कार। कहते नहीं इसने अच्छे कर्म किए तो कहते इनके संस्कार अच्छे हैं। तो कर्मों की पहचान है संस्कार। आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार है। मन संकल्प करता है, बुद्धि निर्णय करती है, और आत्मा शरीर के द्वारा जो कर्म करती है, जो एक आदत के रूप में परिवर्तन हो जाती है, हैबिट बन जाती है, उसको क्या कहते हैं? संस्कार। अब ये जो संस्कार है वो चार प्रकार के होते हैं। संस्कारों का सीधा संबंध संस्कृति से है, जैसे संस्कार वैसी संस्कृति मानी जाती है। संस्कार चार प्रकार के होते हैं। एक है व्यक्ति अपने जन्मजात संस्कारों को लेकर के आती है। जन्म से सभी के संस्कार एक जैसे नहीं होते हैं ना, हर एक के संस्कार अलग अलग होते हैं। तो एक जन्मजात संस्कार, अब वो जहां जन्म लेंगे, जिस जाति में जन्म लेंगे, जिस वंश में जन्म लेंगे, जिस कुल में जन्म लेंगे, हुआ ना, जन्मजात संस्कार। फिर दूसरा है माता पिता के संस्कार। बच्चे पैदा होते हैं, फिर माँ बाप के द्वारा उनको क्या पालना मिलती है, तो ये दूसरों है माता पिता के द्वारा मिले हुए संस्कार। तीसरे हैं वर्तमान समाज के वातावरण वायुमंडल से सीखे हुए संस्कार। बोलते हैं नहीं, 50 साल पहले ऐसे नहीं था, 100 साल पहले ऐसे नहीं था। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जनरेशन गैप पड़ती जाती है, हर एक जनरेशन की अपने संस्कार बनते हैं। तीसरे और चौथा, जो व्यक्ति स्वयं अपने पुरुषार्थ से संस्कार बनाती है, समझ गए? किसी ने जीवन भर मेहनत करके सीख करके नाविक बनने का संस्कार अपने में डाला, कोई पुलिसमैन बना, कोई मिलिट्री मैन बना, कोई आर्टिस्ट बना, वो संस्कार बनाए गए, क्रिएट किए गए। और संस्कृति किससे बनती है? अनेक व्यक्तियों के संगठित कार्य कारोबार से, जो एक छाप बनती है, एक इमेज बनती है। मिसाल, आज के दिन में जापान की संस्कृति की महिमा होती है कि वहां के लोग कैसे हैं, उन्होंने कितनी नीतिमत्ता है। जापान की संस्कृति कुछ और है, अमेरिका की संस्कृति कुछ और है, इंडिया की संस्कृति कुछ और। अब इंडिया की आज की संस्कृति और सदियों पुरानी, युगों पुरानी संस्कृति, दोनों में अंतर है। तो ये जो संस्कृति को बनाए रखने में कला का क्या महत्व है, ये जो विषय रखा है, इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा विचारणा भी करेंगे ना कि किस संस्कृति को हम बनाए रखना चाहते हैं, सतयुगी संस्कृति को जो युगों पुरानी है, जो आदि संस्कृति है, कि कलयुगी संस्कृति को जो बिगड़ी हुई है, किस संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं हम, कौन सी संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं? आदि सनातन संस्कृति को बनाए रखना और उसमें फिर कला का महत्व क्या है? तो सबसे पहले समझो कला क्या चीज है, कला किसको कहते हो, कला की व्याख्या क्या है, कला क्या, किसको कला कहते हैं, किसको कहते, कला किसको कहते बताओ, हुनर को कला कहते हैं, और वो कला कहाँ से आई? हाँ? संगीत की कला, और मानव द्वारा सम्यक प्रस्तुति की कला, और आत्मा के गुणों के द्वारा जो प्रकट होती है वो कला है, बोलने की कला, सुनने की कला, सोचने की कला, तो कला वो चीज है जो आत्मा में है। आत्मा शरीर के द्वारा प्रस्तुति करती है, तो आत्मा में क्या क्या कला है? आत्मा में सोचने की, समझने की, विचार करने की, निर्णय करने की, परखने की, समेटने की, समाने की, सहन करने की, सामना करने की, देखो कितनी सारी कला है। ये जो आत्मा की कला है, उस कला को बनाए रखने के अंदर कला का क्या महत्व है? संस्कृति को बनाए रखने में कला का क्या महत्व है? तो कला अपने शुद्ध स्वरूप में चाहिए, तब वो संस्कृति की सुरक्षा कर सकते हैं। और कला आत्मा में है, और आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, और इस सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित आत्मा जब शरीर के द्वारा कुछ भी प्रकट करती है तो वो संस्कृति बन जाती है। संस्कृति क्या है? शरीर कर्म इंद्रिय के द्वारा कर्म करती है, वो कर्म संस्कार के रूप में प्रदर्शित होती है, वो संस्कारों को संस्कृति कहते हैं। जैसे कहते हैं हमारी संस्कृति है हम नॉन वेज नहीं खाते हैं, हमारी संस्कृति है हम बड़ों का आदर करते हैं, हमारी संस्कृति है हम जीवों पर दया करते हैं, हम गाय माता की रक्षा करते हैं, हम अहिंसक रहते हैं, ये सारी हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति को बनाए रखने के लिए सीधा रास्ता एक ही है, आत्मा के सच्चित आनंद स्वरूप में, आत्मा के पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप में, आत्मा की 16 कलाओं में आत्मा स्थित रहे, और फिर वो जो कुछ करेंगे उसका प्रभाव व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से पूरे विश्व तक फैलेगा। तो आत्मा की कला को विस्तार के रूप में क्या कहते हैं? अध्यात्म की कला। क्योंकि आत्मा अकेली नहीं है, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, और इसीलिए परमात्मा को याद करने की जो कला है उसे कौन सी कला कही? राजयोग की कला। परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए। गीता में गायन है ने, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं। तो इस समय परमात्मा आया है या आएंगे, आप सबका मानना क्या है? जो कहते हैं परमात्मा आया हुआ है वो हाथ उठाए। अच्छा, और जो कहते हैं आएगा कभी न कभी वो हाथ उठाए। अच्छा, जो कहते हैं आया है वो बताए कहाँ आया है, कहाँ आया है, कहाँ आया है? भारत भूमि पर आया है, ब्रह्मा पिता के माध्यम से काम कराया है। तो सर्वश्रेष्ठ कलाकार परमात्मा है, और संस्कृति की रक्षा के लिए परमात्मा हमें कैसा बनाता है? क्योंकि परमात्मा को ये सत्य मालूम है, व्यक्ति परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी है। व्यक्ति परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। एक बार एक बच्चा अपनी माँ को बहुत परेशान कर रहा था, माँ को कुछ भी काम करने नहीं देता था। उसकी माँ बहुत तंग हो गई, बोला इस लड़के को कोई ऐसा काम दे दो मैं कि वो उसी में लगा रहे। तो घर की दीवार पर वर्ल्ड का मैप था, तो उस माता ने बच्चे को कहा देखो ये क्या है? बोला वर्ल्ड का मैप है। तो बोला देखो अभी मैं उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देती हूँ, तुम ध्यान से देख लो, फिर ये जैसा है वैसा ही तुमको जोड़ना पड़ेगा। उस जमाने में मोबाइल नहीं था कि वो फोटो खींच ले। उसने कहा ठीक है। उसकी माँ ने उसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, फिर बोला अभी जोड़ो। माँ तो चली गई। अब वो टुकड़ों को देख रहा था तो उसको कहाँ इंसान का नाक नजर आया, कहाँ आंख नजर आई, तो वो एक इंसान को ढूंढने लग गया कि आंख है नाक है तो सब कुछ होगा। तो ढूंढते ढूंढते जो चीज जहां रखनी, क्योंकि एक इंसान कैसा है वो तो उनको मालूम था ना, उसने वो टुकड़ों को जोड़ दिया, उसमें से एक पूरा इंसान बन गया हूं। और जब पलट के देखा तो विश्व का गोला बन गया। उसने अपनी मां को कहा, मां 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 देख देख मैंने बना दिया। मां सोच में बढ़ गई कि इसने इतना जल्दी ये गोला कैसे जोड़ दिया। उसने कहा, बच्चे तुमने ये कैसे जोड़ दिया इतना। तो उसने उलट करके दिखाया, देखो मां पीछे में एक इंसान का चित्र था, मैंने इंसान को जोड़ा तो क्या हो गया, विश्व का गोला जुड़ गया। स्व परिवर्तन से, व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन हो सकता है। तो परमात्मा ने क्या किया, इसी मास्टर की को अडॉप्ट किया। परमात्मा ने एक एक आत्मा के जीवन में बदलाव लाया और आत्मा के अंदर जो 16 कलाएं हैं, आत्मा स्वयं 16 कला संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, डबल अहिंसक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। यही संस्कार हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति कौन सी संस्कृति है, दैवी संस्कृति है, जहां हर मानव देव है, जहां हर घर मंदिर है, जहां प्रेम आनंद खुशी शांति पवित्रता ये दिव्य गुण श्रृंगार है। तो समझ में आया कला किसको कहते हैं। कला डांस नाटक ये वो तो सतयुग में भी होगा, लेकिन वो कला नहीं है। वो क्या है, वो क्या है, उसको कला कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कल्चरल एक्टिविटी। वो कला नहीं है, वो कल्चरल एक्टिविटी है, वो सांस्कृतिक प्रोग्राम है। उनको कला समझ लेना भूल। और अभी तो सांस्कृतिक एक्टिविटी में संस्कृति रही है, संस्कारों की छवि उभर आती है क्या, नहीं उभर आती है। तो इसीलिए जो हमारी आदि सनातन संस्कृति है, दैवी संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए आत्मा की जो 16 कला है, उन कलाओं की रक्षा करने से, वो कला के द्वारा फिर से संस्कृति की पुनः स्थापना होगी। अभी है नहीं, हमें पुनः स्थापना करनी है। तो पुनः स्थापना करने के लिए कितना बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, परंतु मुश्किल नहीं है। क्यों, चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं अपने से शुरुआत कर लूं, अगर मैंने अपने से शुरुआत किया और उसको औरों तक पहुंचाने का काम किया, तो मेरे हिस्से में जो फर्ज अदाई आती है वो हो जाएगी। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, मैं अकेली कुछ भी कर सकती हूं, मैं योगी बन गई, चलो मुझे बहुत खुशी मिल गई। अब मैं कहूं ठीक है भाई, मेरी जीवन बन गई, अब मुझे सब मिल गया, अब मुझे कुछ भी करने की दरकार नहीं है। तो मेरा कुछ भी हिस्सा जमा हुआ हुआ संस्कृति को बनाने में, मेरा हिस्सा जमा हुआ नहीं होगा। तो कोई भी काम करने में संगठन चाहिए। एक संगठन की शक्ति कहाँ की कहानी है। एक बार ये जो पांचे अंगुलियां है ना, वो आपस में लड़ने लगी, उन्हों की आपस में युद्ध हो गई। ये पांचों अंगुलियों की क्या युद्ध हो गई, अपने में बड़े थे बड़ा कौन है, युद्ध क्या हुई, बड़ा कौन। तो ये कहने लगी, देखो मैं हूं ना सबसे बड़ी, ये बीच की अंगुली कहती, मैं हूं ना बड़ी और मैं किस में काम आती, पूजा में काम आती हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो इसने क्या कहा मालूम है, ये दिखाया, किसने कहा, मेरे बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता है। तो ये कहती है, मालूम है कृष्ण भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाने आया था तो कौन सी, ये तर्जनी अंगुली ली थी। तो ये कहती है, आपको मालूम है किसी भी कार्य में जब अभिप्राय लेना होता है, मत लेना होता है, अंगुली खड़ी करनी होती है तो कौन सी अंगुली खड़ी की जाती है, ये की जाती है, मेरा महत्व है। तो आप सभी लड़के भगवान के पास गए कि भगवान जी न्याय करो, हमारे पांचों में से बड़ा कौन। भगवान ने कहा ठीक है, चूरमा का लड्डू बनाने का चूरमा मंगाया। भगवान ने क्या किया, लड्डू का चूरमा मंगवाया। चूरमा मंगवा के कहा कि अभी ये लो, इसमें से जो लड्डू बना के ले आवे वो बड़ी, जो लड्डू बना के ले आवे वो बड़ी। अब गए सब लड्डू बनाने, अकेले को बनाना था ना, किसी से भी लड्डू बना नहीं। आकर के कहा भगवान ये आप हमको क्या बोलते हो, ये तो नहीं बनता है हमारे अकेले से। तो बोला मिल करके बनाओ। तो मिल करके बनाया था तो लड्डू बनेगा ना, मनुष्य को सबसे बड़ा गिराने वाला कोई विकार है तो कौन सा है, मैं अहम। तो ये जो मैं और मेरा है ना, उस मैं और मेरे के अहंकार ने संस्कृति को खत्म किया है। इसलिए संस्कृति की रक्षा करनी है तो पहले कौन सी कला धारण करनी पड़ेगी, मैं और मेरे अहम की जगह क्या लाना पड़ेगा, नम्रता। नम्रता निर्माणता धारण करनी पड़ेगी। तो गुण जब कर्म में आता है तो वो शक्ति का रूप लेता है, कला का रूप लेता है, संस्कृति का रूप लेता है। कोई भी गुण वो जब कर्म में आता है तो संस्कार, कला, संस्कृति बन जाता है। तो संस्कृति को बनाए रखने के लिए, मूल्यों को समझना पड़ेगा, गुणों को धारण करना पड़ेगा, परस्पर प्रेम सम्मान सहानुभूति को लाना पड़ेगा। और ये कर्तव्य कोई आकाश से उतराएगा और होगा ऐसे नहीं होगा, इसको डोर टू डोर ले जाना पड़ेगा, उसको घर घर तक, व्यक्ति व्यक्ति तक ले जाना पड़ेगा। अगर मैं चाहती हूं कि इस देश की संस्कृति को बचाना, वो मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। आप सभी समझते हैं कि हमारी वो संस्कृति को पुनः स्थापन करना वो हमारा कर्तव्य है। जो समझते हमारा कर्तव्य है, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। तो उसकी शुरुआत कहां से करेंगे? स्वयं से करेंगे, कि वो आदि अनादि अविनाशी संस्कृति की रक्षा के लिए मैं स्वयं के जीवन को परिवर्तन करने के लिए संकल्पबद्ध होती हूं। देखो, आत्मा के मूल 7 गुण है, उस मूल गुणों को धारण करने से बाकी सब गुण अपने आप आ जाएंगे। पहला गुण क्या है? ज्ञान। आत्मा में ज्ञान है, नॉलेज है, विवेक है। जब भी हम कुछ सुन रहे हैं तो हमारे अंदर से वो ज्ञान के प्रति हमारी जिज्ञासा बनी रहती है, और जो भी बातें हम सुनते हैं तो हमारा विवेक जवाब देता है, राइट रॉन्ग, सही है नहीं सही। तो हमारा पहला गुण है ज्ञान। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। तो यहां आप 3 दिन में जो राजयोग शिविर सुन रहे हैं उसमें आपको ज्ञान सुनाया जा रहा है, आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, ये पूरा विश्व नाटक क्या है, कर्म क्या है, कर्मों की गति क्या है, हमारे जन्म कितने हैं, अभी ये हमारा कौन सा जन्म है, ये सारा सुनाया जा रहा है ने? कुछ बातें पहली बार सुनते हैं ना तो हमारे मन में एकदम नहीं बैठती है। तो यहां तो सब करके जाओ, पर आप जिस केंद्र से आए हुए हो वहां जाना, वहां 7 दिन का कोर्स अच्छी तरह से सुनना, दोबारा सुनना, और आत्मा के ज्ञान स्वरूप को अच्छी तरह समझना। ज्ञान क्या चीज है? ज्ञान में कौन सी शक्ति है? जहां नॉलेज है वहां प्रेम है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? अगर आप विदेश में गए, आपके बाजू में गए कोई भाई बैठा है, बात शुरू हुई, आप पूछते हैं, भैया आप कहां से? इंडिया से। अच्छा, इंडिया में कहां से? बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे में कहां से? गोरेगांव से। अच्छा, गोरेगांव ईस्ट या वेस्ट? वेस्ट। अच्छा, तो मैं भी वहां ही रहता हूं। ज्ञान के द्वारा, परिचय के द्वारा आत्मीयता लगी ना कि ओहो, हम तो एक ही जगह के हैं। 2 डॉक्टर्स मिलेंगे, एक दूसरों से स्नेह बनेगा, 2 पुलिस वाले मिलेंगे, लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक, समान समान को आकर्षण करता है। जब हमें ये समझ चल जाती है कि ये सब आत्माएं हैं, जिसको भी चलता फिरता देख रहे हैं, किसी धर्म का, किसी ज्ञाति का, ये तो सब आत्माएं हैं। और ये सब आत्माएं तो परमात्मा की संतान हैं, और ये तो सब मेरे भाई बहन हैं। अरे ये मेरे परिवार के हैं, अपने वाले हैं। ये ज्ञान अंदर में प्रकट होने से क्या होगा, आपसी प्रेम का संबंध बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो आत्मा जितनी ही ज्ञान स्वरूप बनती, इतनी प्रेम स्वरूप बनती। फिर छोटा बड़ा, गरीब तवंगर, नाति जाति, कोई भी भेदभाव आपकी बुद्धि में नहीं आएगा। बस आपकी दृष्टि कौन सी बन जाएगी? ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया ने, ज्ञान की दृष्टि बन गई। ज्ञान की दृष्टि से प्रेम का अहोभाव पैदा हुआ। तो आत्मा का दूसरा स्वरूप है प्रेम स्वरूप। अब देखो, प्रेम तो कितनी बड़ी वैल्यू है। जहां प्रेम है वहां निस्वार्थ है, जहां प्रेम है वहां समर्पण की भावना है, जहां प्रेम है वहां वननेस है। तो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। ज्ञान से प्रेम, प्रेम से आनंद। अगर दोस्त ने ही आपस में मिलेंगे तो मिल करके क्या कहेंगे? पहला प्रतिभाव क्या रहेगा? कुछ समय के बाद दोबारा हम आपसे मिले तो आपका क्या प्रतिभाव होगा? आपसे मिलकर के हम बहुत खुश हुए, हमें बहुत आनंद हुआ। ज्ञान से प्रेम, प्रेम से आनंद। जहां स्नेहियों का मिलन होगा वहां अपने आप आनंद होगा। जहां आनंद है वहां क्या होगा? सुख। ऐसा आनंद के वातावरण में कोई कहेगा मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है? कहेगा सुख, अतीन्द्रिय सुख अनुभव हो रहा है। तो जहां आनंद है वहां सुख है। तो आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप। अच्छा, जहां सुख है वहां क्या है? शांति है। तो आत्मा शांति स्वरूप है। जहां ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति सब कुछ है, वो आत्मा को कैसी आत्मा कहेंगे? पवित्र आत्मा है। जिसके अंदर ये सब गुण देखेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत पवित्र आत्मा है। और जहां ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ है, वहां क्या है? शक्ति है। शक्ति स्वरूप आत्मा है। बस ये मास्टर की है स्वयं को आत्मा समझना, अर्थात ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति का अधिष्ठाता समझना। ये सब मेरे गुण हैं, मैं इन गुणों का मालिक हूं, मैं आत्मा हूं। और जब इस गुणों के मालिक बनकर के आत्मा चलती है तो व्यक्तित्व में अपने आप बदलाव आ जाता है। अपने आप चेहरा बदलता, चलन बदलती, स्वभाव बदलता, मूड बदलता, सब कुछ बदल जाता है। बदल जाता है नहीं? यहां आकर के आपको ऐसा महसूस होता है कि आप में कुछ कुछ बदलाव आया है, जिनको लगता है जरा हाथ उठाएं तो बदलाव आया है ना, क्या क्या फील हुआ, क्या बदलाव आया सुनाएंगे। आपको क्या लगा? उत्साह बढ़ गया। वाह, मनुष्य के जीवन में तीन चीजें हमेशा चाहिए, हिम्मत, उमंग, उत्साह। आप उत्साह बढ़ गया, आप स्थिरता आई, वेरी गुड, आप खुशी मिली, आप बोलने की शक्ति प्राप्त हो रही है, और आप बहने हाथ ऊपर करके बोलो, शांति मिली, अंदर के परसेप्शन चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छा, सुकून मिलता है, और जी शांति मिली है। तो क्यों मिला? कोई जादू नहीं हुआ है, आप ज्ञान सुनते गए, आप जो सिखाया वो सीखते जा रहे हैं। जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनों के जीवन में ये ऑलरेडी आ गया, क्योंकि वर्षों से साधना कर रहे हैं, उनों का प्रभाव वो हमें पावर देता है, एक स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट बनी हुई है, तो बदलाव आ रहा है। तो इसीलिए जितना जितना स्वयं को आत्मा समझेंगे और फिर परमात्मा को पिता समझेंगे, पिता से पुत्र को वर्षा मिलता है, तो परमात्मा के साथ आप कनेक्शन करेंगे तो परमात्मा में जो शक्ति है वो सारी शक्ति आपके अंदर ट्रांसफर होती जाएगी। तो संस्कृति को बनाए रखने के लिए सरल और सहज विधि है स्वयं को आत्मा समझना, परमात्मा को पिता समझना, और बुद्धि का संबंध परमात्मा के साथ जोड़ना। एक बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उसे रिचार्ज करने के लिए किसके साथ कनेक्ट करते हैं? जनरेटर के साथ कनेक्ट करते हैं। परमात्मा स्पिरिचुअल जनरेटर्स हैं। परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि का तार जोड़ने से क्या होगा? हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। अभी हमारी बैटरी बहुत समय की डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूज करते जाओ, चार्ज करते जाओ। मोबाइल को रोज चार्ज करते हो? करते हो? गाड़ी की बैटरी को चार्ज करते हो? आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए रोज दिन में एक बार कम से कम एक घंटे का टाइम। और कहाँ जाना पड़ेगा? सर्विस स्टेशन पर जाना पड़ेगा ना। तो बाबा ने हर शहर में क्या बनाए हैं? सेंटर्स हैं, वो सर्विस स्टेशन है हमारे लिए, वो सर्विस स्टेशन है। दिन में एक बार सर्विस स्टेशन पर जाओ, अपनी बैटरी को चार्ज करा लो, फिर 24 घंटे के लिए निश्चिंत, फिर सुबह हो जाए, फिर पहुंच जाओ। तो आप भी परमात्मा के कार्य में अपना की रोल बजा सकेंगे, महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकेंगे। तो इस जीवन में ये हो जाए तो अच्छा है ना? अच्छा है ना? कौन चाहते हैं हमें भी की रोल प्ले करना है? तो जरा हाथ उठाएं, बहुत अच्छा। तो इसीलिए अपने लिए ताली बजाओ। और यहाँ से बाबा की कुटिया है, बैठ करके दृढ़ संकल्प से अपने को बनाने का व्रत लेकर के जाना, और जो कुछ छोड़ने जैसा है, समझो कोई व्यसन छोड़ है, व्यसन का यहाँ ही दान देके जाओ। कोई कमी कमजोरी है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, पास्ट का बहुत चिंतन चलता है, नेगेटिव चिंतन चलता है, भविष्य की चिंता होती रहती है, तो ये जो कमियां हैं उसको लिख के भगवान के हवाले कर देना। क्योंकि सोन शेरणी के दूध को रखने के लिए कैसा बर्तन चाहिए? सोने का बर्तन चाहिए। तो ये परमात्म ज्ञान को रखने के लिए सोने की बुद्धि चाहिए। इसलिए यहां से अपना शुद्धिकरण करके और दृढ़ संकल्प लेकर के जाएंगे, और फिर साल के बाद आ जाना, और क्या हाँ? तो आप सभी को हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं, और इतने बड़े परमात्मा के भगीरथ कार्य में बस मुझे एक अंगुली देनी है। कितने? एक अंगुली दी। आप सभी को राजयोग शिविर में ये समझाया है कि जब हम परमात्मा को याद करें तो खुली आंखों से योग करना है। समझाया है? समझाया है? हाथ को ये खुली आंखों से योग क्यों करना है वो भी समझाया है ने? इसलिए यहाँ जब बैठते हैं, सामने में ड्रिल टीचर बैठे हैं, इस समय मैं आपकी ड्रिल टीचर हूँ। स्कूल में ड्रिल सिखाते हैं तो टीचर ऐसे करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे। ये है दृष्टि की ड्रिल, क्योंकि दृष्टि में बड़ी ताकत है। कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो ये दृष्टि से प्रेम आनंद शांति ये वाइब्रेट होता है। मैं भी आत्मा हूँ, सामने वाले भी आत्मा है। मस्तिष्क में देखने से दोनों नयनों से वो शक्ति मिलती है। ड्रिल टीचर तो जहां भी दृष्टि देंगे, पर आपकी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? ड्रिल टीचर की दृष्टि की दृष्टि से। तो आप संकोच नहीं करना, हमें शरीर को तो देखना ही नहीं है ना। मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। तो ऐसा विधिवत मेडिटेशन करना, ठीक है।